का था, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं तैत्रियोपनिषद से एक कहानी, भृगु का तप। अति प्राचीन युग में वरुण पुत्र भृगु बहुत बड़े महर्षि हुए थे। एक बार उनके मन में परमात्मा को जानने की तीव्र उत्कंठा पैदा हुई। इसी उत्कंठा को लेकर वे अपने पिता वरुण देव के पास पहुंचे। वरुण वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, अतः भृगु की परमात्मा को जानने की उत्कंठा का समाधान करने के लिए उन्हें किसी अन्य आचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं थी। अपने पिता के पास पहुंचकर भृगु ने उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, कृपया कर आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। पुत्र का यह आग्रह सुनकर पिता वरुण ने तब भृगु को समझाया, भृगु, अन्न प्राण नेत्र कान मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार हैं। इन सब में ब्रह्म की सत्ता दिखाई दे रही है। ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सभी प्राणी जिनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, और महाप्रलय के समय जिसमें जाकर सब विलीन हो जाते हैं, उनको जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। तुम तप के द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करो। अपने पिता वरुण का उपदेश सुनकर भृगु ऋषि ब्रह्मचर्य सामदाम आदि नियमों का पालन करते हुए, समस्त भोगों का त्याग करके संयम से रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार करने लगे। यही उनका तप था। तप करके भृगु ने विचार किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए थे वे सब अन्न में पाए जाते हैं। सभी प्राणी अन्न के फलस्वरूप वीर्य से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के बाद अन्न रूप इस पृथ्वी में ही मिल जाता है। अपना विचार लेकर भृगु अपने पिता के पास पहुंचे और उन्हें अपना विचार सुनाया। सुनकर वरुण कुछ नहीं बोले, वे सोचने लगे, भृगु ने अभी ब्रह्म स्थूल शरीर को भी नहीं पहचाना है, वास्तविक रूप तक उसकी बुद्धि नहीं गई, इसलिए इसे तप करके अभी और विचार करने की जरूरत है। किंतु इसने जो कुछ भी समझा उसे तुच्छ बताकर इसमें अश्रद्धा उत्पन्न करने से इसका भला होने वाला नहीं है, अतः इसकी बात का उत्तर ना देना ही उचित रहेगा। जब पिता से कोई उत्तर नहीं मिला तो भृगु ने कहा, हे भगवान, यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप ही मुझे ब्रह्म का सही तत्व समझा दीजिए। वरुण बोले, पुत्र, तुम तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने की चेष्टा करो। ये तप ब्रह्म का ही दूसरा रूप है, अतः ये उनका बोध कराने में हर प्रकार से समर्थ है। पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने पहले की भांति ही पुनः ब्रह्म के विषय में विचार करना आरंभ किया। भृगु ने सोचा, अन्न के बाद पिताश्री ने प्राण की बात कही थी, तब प्राण ही ब्रह्म है। भृगु ने पुनः सोचा, पिताश्री द्वारा बताए गए ब्रह्म के सभी लक्षण प्राण में पाए जाते हैं, सभी प्राणी प्राण से ही उत्पन्न होते हैं, एक जीवित प्राणी से उसी के समान दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है और वे सब प्राणी सिर्फ प्राण के कारण ही जीवित रहते हैं। यदि सांस का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण ना किया जाए तथा रस सारे शरीर में ना पहुंचाया जाए, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। मरने के बाद मृत शरीर में प्राण नहीं रहते, वे ब्रह्म से जा मिलते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि प्राण ही ब्रह्म है। ऐसा निश्चय कर भृगु पुनः वरुण के पास गए और उन्हें अपने अनुभव बताए। सुनकर वरुण ने पुनः कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा, भृगु पहले की अपेक्षा कुछ तो सूक्ष्मता की ओर झुका है, किंतु अभी इसे बहुत कुछ समझना शेष है। ऐसी दशा में मौन रहना ही उचित है। मेरे मौन से इसकी जिज्ञासा और बढ़ेगी और तब ये और भी गहराई से सोच सकेगा। अपने पिता को मौन देख भृगु ने निवेदन किया, तात, यदि अब भी मैंने ठीक से ना समझा हो तो कृपा कर आप ही मुझे ब्रह्म तत्व का बोध कराइए। वरुण ने एक बार फिर भृगु को तप करने के लिए कहा। भृगु तप करने लगे और विचार किया, पिताश्री ने मन के विषय में भी कहा था, मन के कारण ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री पुरुष के मानसिक प्रेमपूर्ण संबंधों से हर प्राणी बीज रूप में माता के गर्भ में आते हैं और फिर जन्म लेते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। मन ही ब्रह्म है। भृगु ये विचार कर पुनः अपने पिता के पास पहुंचे और उन्हें अपने निर्णय से अवगत कराया। इस बार भी वरुण ने उन्हें तप करने के लिए कहा। इस बार विचार करते हुए वे समझे, ये विज्ञान स्वरूप चेतना जीवात्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि सभी प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं और इस विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा ना रहे तो ये मन, इंद्रिय, प्राण आदि कोई भी नहीं है। ऐसा सोचकर भृगु पुनः अपने पिता के पास गए और उन्हें अपने विचार से अवगत कराया। वरुण पहले की भांति ही मौन रहे, किंतु उन्हें ये सोचकर संतोष हुआ कि उनका पुत्र पहले से बहुत कुछ ब्रह्म के निकट पहुंच गया है। ये ब्रह्म के स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर की ओर तत्वों से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है। अब ये और तपस्या करेगा तो स्वतः ही ब्रह्म के स्वरूप को समझ जाएगा। यही सोचकर वरुण चुप रहे। अपने पिता को मौन देख भृगु निराश और उत्साहहीन नहीं हुए। वह पुनः गहन चिंतन मनन में रत रहकर ब्रह्म के निकट पहुंचने का प्रयास करने लगे। अंततः वह इस निर्णय पर पहुंचे कि आनंद ही ब्रह्म है। यह आनंदमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबकी अंतरात्मा है। ये सब भी इन्हीं के स्थूल रूप है। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं। ब्रह्म के पूरे लक्षण तो आनंद में ही घटते हैं। देखा जाता है, कोई भी प्राणी दुख के साथ जीवित नहीं रहना चाहता। सभी आनंदपूर्ण जीवन चाहते हैं। इतना ही नहीं, उस आनंदमय सर्व अंतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। सबके जीवनधार आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार चिंतन मनन करने से भृगु को परब्रह्म का वास्तविक ज्ञान हो गया। अभी आप सुन रहे थे तैंतरीय उपनिषद से एक कहानी, भृगु का तप। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।